Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. कुछ व्यवहारिक शिक्षा है, ये आध्यात्मिक शिक्षा नहीं है। श्रील प्रभुपाद इस शिक्षा भी हमको दे कि गाड़ी चला थके हुए गाड़ी चलाना नहीं और सीट बेल्ट लगाना। मैं बार बार सभी भक्तों को बोलता हूँ, लेकिन वे सब सोचते हैं कि भगवान कृष्ण हमको रक्षा करते हैं। तो हमको रक्षा करते कैसे? इस प्रकार व्यवहारिक उपदेश देने के द्वारा। तो कुछ भक्त कितने महीने के पहले, 3-4 महीने के पहले जमनागर से द्वारका जाने वाले थे और सब बहुत थक गए है। और क्या हुआ? एक्सीडेंट, क्योंकि सीट बेल्ट लगाया है इसलिए बच गए, लेकिन गाड़ी तो बिल्कुल नष्ट हो गया। सो महत्वपूर्ण और भौतिक शिक्षा है, लेकिन महत्वपूर्ण ही है। सो क्या क्या प्रश्न है? इन इंग्लिश, इज इट एडवाइजेबल टू टेक दीक्षा नोइंग योर फैमिली मेंबर्स डू टेक नॉन वेज? इज दीक्षा अ मस्ट फॉर माय स्पिरिचुअल प्रोग्रेस? This is by, क्या नाम है?
सुमनन?
कौन है? तो नहीं है। Is it necessary, is it advisable to take diksha knowing the family members take non-veg? Who asked this? Not here, okay, so we'll maybe do that later.
महाराज जी दंडवत प्रणाम। मेरे प्रभु जी की दीक्षा हो चुकी है पिछले साल, हम 3 साल से भक्ति में हैं। उन्होंने मेरे लड़के को जो 5 साल का है उसे अवधि आश्रम में ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन मेरा मन बहुत ही चल विचल है। वह मेरा एक ही लाड़ है।
मैं क्या कहूँगा? यदि हाँ कहूँगा तो वो पति मुझको निंदा करेंगे, और यदि ना कहूँगा तो पत्नी मुझको निंदा करेंगे। तो आप सब आपस में कुछ समन्वय कीजिए। श्रील प्रभुपाद गुरुकुल के बारे में प्रहलाद महाराज का वचन बार बार बोले, कौमार आचरत प्रज्ञो धर्मान भगवता ने दुर्लभम मानुषम जन्म तदाप्य ध्रुवम अर्थदम। जिसका अर्थ है आपका मन अलग जगह जाए था। कुमार आचरत प्रज्ञ, जो प्रज्ञ है, जो विशेष बुद्धिमान है, वे कुमार अवस्था से, अर्थात जीवन का, इस मानव जीवन का शुरुआत से, भगवत धर्म पालन करते हैं। क्योंकि इस मनुष्य जन्म क्षणिक है, परंतु इसका विशेष अर्थ है कि इस क्षणिक मानव जीवन में भागवत धर्म पालन करना संभव है। इसलिए शुरुआत से कृष्ण भक्ति करना चाहिए। तो गुरुकुल लड़के के लिए गुरुकुल जाना बिल्कुल जरूरी नहीं है कृष्ण भक्तिमान होने के लिए, लेकिन उससे सुविधा होती है. जो राक्षसी तथाकथित विद्यालय नहीं मिलते तो गुरुकुल में कृष्ण भक्ति शिक्षा होती है. और छंद अमार्क का गुरुकुल में कैसे हिरण्यकशिपु जैसे राक्षस होना वही शिक्षा होती है. जो आजकल ये सब स्कूल में होती है उस प्रकार की शिक्षा. सो आपका क्या राय है इसके बारे में? आप जाने थे नंद प्रभु तो स्कूल ये साधारण स्कूल इत्यादि जाने के पश्चात भगवत विद्यापीठ में अध्ययन किया है, जिसमें संस्कृत माध्यम में श्रीमद् भागवत की शिक्षा होती है. तो आपका क्या राय है? ठीक है, तो आप पति पत्नी में आप बातचीत करके आप निर्णय कीजिए. There's a question about seven tongue sankirtan. Who asked this? Yeah, well, the answer is in Bhakti Siddhanta Vaibhav. You can look it up yourself. In Krishna book, did Kaliya snake poison the Yamuna lake on purpose? Or was it poisoned by his mere presence? Okay, you can ask.
Should I read?
Yeah.
In Krishna book.
No, Hindi mein. Krishna Lila mein. Kali.
Krishna ki Lila.
Kali pustaki kahani nahi hai. Wo Krishna Lila mein aise hue.
कृष्ण लीला में क्या कालियानाग ने यमुना का जो तालाब था उसको हेतुपूर्वक विषैला किया था या वह विषैला हो गया था उनके उपस्थिति मात्र से?
तो श्रीमद् भागवत से हम इस प्रकार समझते हैं कि कालिया का श्वास में इतना सा क्या बोलते हैं विषक्त हवा था कि अपने आप इन वो कालिया की उपस्थिति से वो पूरी इलाका तो एकदम विषक्त हो गया है. उसके अलावा वो आगा विष तो फायदा नहीं हुआ तो शायद हेतुपूर्वक करना चाहता था, लेकिन ऑटोमेटिकली अपने आप तो पूरी इलाका तो ऐसे विषक्त हो गया. या ओके, इट इज अ क्वेश्चन, इट इज अ क्वेश्चन. आई आस्क्ड हिम टू पुट इट हियर. I asked him to give it here. Actually, you can come and give the answer to this one. Up, yaha aaye, or is prashna ka uttar aap dijiye, uske baad main aur thoda sa kahunga. Ask it. Oh, jo dibruga asam, hey, aapko dekha, ha ha. So, aap puchiye.
Aapke charan kamalon mein sada pranam karta hu, Maharaj. मैं नम्र निवेदन करता हूँ कि आप डिब्रूगढ़ आसाम के वहाँ पर मुलाकात लें. हम जो यहाँ के जो कॉन्ग्रीगेशन भक्त हैं वो बहुत ही लाभान्वित होंगे आपके आपके उपस्थिति से, तो आपकी मुलाकात की हम आशा करते हैं, अपेक्षा करते हैं।
मुझको बुलाते हैं वो डिब्रूगढ़ आसाम जाने के लिए। ओके, केवल आसाम से नहीं है, बहुत बहुत जगह से भक्तों मुझको बुलाते हैं। मुझे बहुत कुछ करना है श्रील प्रभुपाद की सेवा में। इस जीवन में मुझे मालूम नहीं और कितने साल इस शरीर में रहूंगा, तो टाइम मैनेजमेंट कैसे वो सीमित समय में मैं सबसे अच्छी तरह श्रील प्रभुपाद की सेवा कर सकता हूँ, तो इस शरीर तो ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, तो यदि कुछ पुस्तक लिख सकूँगा उस सीमित समय में, वो सब पुस्तक रहेगी, तो इसलिए मैं सब आमंत्रण ग्रहण नहीं कर सकता हूँ। एक और विचार है कि इतने सब भ्रमण करने से शरीर की स्वास्थ्य तो अच्छी तरह नहीं रहते, तो इसलिए इस प्रकार श्रवण कीर्तन शिविर का आयोजन है, क्योंकि मैं बहुत बहुत जगह नहीं जा सकता हूँ, लेकिन आप सभी भक्त यहाँ आ सकते हैं। तो यदि मैं स्वयं अलग अलग जगह नहीं जाऊँगा, तो मेरे कुछ शिष्यों प्रचारक मेरे प्रतिनिधि रूप में जा सकते। डिब्रूगढ़ गया उसके पास, इसके पास कौन गया, मधुकंठ एक बार गया, और कौन, गोविंद दत्त और सनातन गोस्वामी भी गए हैं एक बार आसाम गए हैं। तो अभी गोविंद दत्त प्रभु जो स्लोवेनिया यूरोप के है, तो हिंदी में ही प्रचार करते हैं, तो गोविंद दत्त प्रभु आपको बुला सकते हैं। केवल गोविंद नहीं है और बहुत है प्रचारक, विशेष आकर्षण है फरंगी प्रचारक श्वेतंग वैष्णव। ठीक है, नेपाल से भी भक्त आए हैं, Kuwait से भी। Do you have a university degree? No. Then you can't go to Kuwait. Kuwait जाने के लिए university degree होना चाहिए। It's वो लेकिन degree तो नहीं है, तो नहीं है किसी भी भाषा में, किसी भाषा में तो degree नहीं है। तो और प्रश्न नहीं है तो है कुछ प्रश्न? ठीक है, तो यहाँ आने के पहले कुछ इस्कॉन वृंदावन भक्त ब्रह्मचारी मेरे पास आए थे और मुझको बताए कि यहाँ से वे श्रील प्रभुपाद की इच्छा के अनुसार वर्णाश्रम के बारे में प्रचार करते हैं, क्योंकि पूरे दुनिया से ही सब भक्त यहाँ आते हैं और यहाँ से वर्णाश्रम के बारे में प्रचार होना चाहिए और आसपास गांव में सब देहात इलाका में वो वर्णाश्रम प्रचार करते हैं. You want to say something? इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं? You want to say something? You want to say? No. All right. So, आपका क्या प्रश्न था? राजस्थान वासी कौन है? कौन कौन?
जो सूरत में राजस्थान से आके सूरत में रहते हैं.
हाँ हाँ हाँ.
उनके बीच में प्रचार करते हैं. वो कहते हैं कि हम 4-5 साल से या 5-6 साल से गोपाल जी की श्री मूर्ति राधा कृष्ण की श्री मूर्ति की सेवा करते हैं और अभी हम वो 2 सालों से 1 साल से इस्कॉन के द्वारा प्रसिद्ध भक्ति मार्ग में आए हैं जिसमें हम यहाँ वो हमें बोलते हैं आप हमें बोलते हैं कि भाई श्री मूर्ति बिना प्रभु की आज्ञा के नहीं लाना चाहिए उसमें अपराध होता है तो अभी आप उसे शयन करा देंगे छवि की सेवा.
हाँ अपराध हो सकते लेकिन वो उद्देश्य तो अपराध नहीं है कृष्ण की सेवा करना. अज्ञान से ऐसे करते हैं लेकिन भावना अच्छी है कि हम कृष्ण की सेवा करेंगे. स्थिति के अनुसार प्रचार करना चाहिए. शिल प्रभुपाद एक बार यहाँ से वृंदावन से अलीगढ़ के पास गए थे जिसमें वो एक बहुत बड़ा बनिया था वो टाइगर लॉक कंपनी का मालिक और इनके वंश में बहुत पीढ़ी के पहले से वो श्री कृष्ण मूर्ति की सेवा हो रही थी. तो शिल प्रभुपाद उसको बंद करना नहीं बोले. शिल प्रभुपाद बोले तो कुछ सलाह देते थे जिससे वो पूजा जो अच्छी तरह चल रही थी जो जिससे वो और बढ़िया हो सकती ऐसे कुछ सुझाव देते. कुछ दिन के पहले मैं इंग्लैंड में था और वहाँ पर मेरे एक गुरु भाई स्मरहरि प्रभु जो यहाँ पर थे वो मंदिर बनाने का समय कुछ साल यहाँ पर इस्कॉन वृंदावन में रहते थे 5-6 साल और वो मुझको बताया कि कुछ दिन के पहले मैं अर्थात वे वृंदावन वापस जाके कुछ भक्तों से बात की जो उस समय से परिचित थे. तो एक वृंदावन के गोस्वामी से बात की कि आपका राय में श्रील प्रभुपाद का क्या प्रदान था वृंदावन के लिए. और वो गोस्वामी वो स्मरहरि प्रभु को बताए कि श्रील प्रभुपाद इतना सुंदर मूर्ति सेवा स्थापना की वृंदावन में कि हम सब जो प्राचीन गोस्वामी वंश के हैं हमें शर्म से हमारी पूजा का मान और बढ़िया किया था, हमको जबरदस्त से हमारी ठाकुर सेवा उसको क्या बोलते हैं इम्प्रूव किया, क्या बोलते हैं इम्प्रूव विकास विकास किया, क्योंकि उस समय वृंदावन में बहुत मंदिर तो उसमें वो परिच्छन्नता तो ठीक नहीं थी और बहुत जाएगा तो ऐसे जर्जरित था, क्या बोलते हैं साधारण हिंदी में जर्जरित, ऐसे बेंगे हुए जर्जरित था। और लेकिन वो श्रील प्रभुपाद तो कृष्ण बलराम की सेवा इतना बढ़िया स्थापित किया है कि हमें भी अभी ठाकुर जी की सेवा उस प्रकार करना हम प्रयास करते हैं। तो सेवा बंद करना खास वो एक मंदिर में जो वो जनसाधारण का मंदिर जय है, आप जो गुजराती में बोलते जय है का मंदिर, जनता के मंदिर उसको बंद करने का नहीं, और कैसे पूजा अच्छी तरह चलेगी ऐसे ही प्रचार करना मेरा सुझाव। श्रील प्रभुपाद अच्छा नहीं लगते थे कि वो पुजारी तो पेशाधारी पुजारी हो, मतलब पैसा लेने वाले, तो खस वो एक परिवार में अगर वो मंदिर स्थापित है तो परिवार के सदस्यों की सेवा करना, ऐसे श्रील प्रभुपाद बोले, ऐसा नहीं है कि एक पुजारी को पैसा देना और हम वो पैसा देने से हम पुण्य मिलते, वो उद्देश्य तो ठीक नहीं है। तो स्थिति के अनुसार प्रचार करना चाहिए। क्या हाँ हाँ मूर्ति सेवा का मतलब सेवा सेवा होनी चाहिए, नहीं सेवा का मतलब जब मैं चाहता हूँ तो खुद सेवा करता हूँ और बाकी समय गोपाल भूखी रहते हैं, वो तो सेवा नहीं है। भगवान की सेवा सतत होना चाहिए। तो आप इस प्रकार प्रचार कीजिए कि सेवा का मतलब सुबह मंगल आरती प्रभात का समय से शायन तक और दिन का समय भी वो भगवान को कुछ शायन देना है, हम देखते हैं बहुत मंदिर में तो शायन नहीं देना, तो दोपहर भी वो भोग और आरती के बाद भगवान को शायन देना है, फिर उसके दो घंटे के बाद अढ़ाई घंटे के बाद भगवान को उठाना ऐसे है। तो वो तो सेवा है, अपनी सुविधा के अनुसार वो तो सेवा नहीं है, वो खुद तो रखना जैसे है। हरे कृष्ण
जो भक्ति करते हैं और वो जन्मने के उद्देश्य भक्ति करते हैं तो उनको ज्ञान विषय भक्ता है या मायावादी है?
मायावादी भक्त तो भक्त है। गौड़ीय संप्रदाय कि भक्तों के अलावा तो सभी भक्त मुक्ति के लिए भक्ति करते हैं। मुक्ति वो मुक्ति शब्द से वो उसका वो अर्थ समझते वो निर्विशेष ब्रह्म में लीन हो जाना ऐसे नहीं है। उनका विचार में मुक्ति है वैकुंठ प्राप्ति, वहां पर भगवान की सेवा करना, परंतु उनका उद्देश्य है मुक्ति प्राप्ति। तो चैतन्य महाप्रभु ऐसे भी बोले, आई नंद तन किंग पतितंग मांग विषमय भवम बुधौ कृपया था वफाद पंकज स्थित धूलि सदृश विचिंत कि मैं इस घर संसार में पतित हो गया हूँ तो मुझको उद्धार करो और आपके चरण रज में धूल का कण जैसे मुझको स्थिति प्रदान कीजिए। तो अहैतु की सेवा, मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवतद भक्ति अहैतु की त्वयि, अहैतु की सेवा के लिए प्रार्थना, अर्थात कि कीट जन्म हाओ जथा थुआ दस बहिमुख ब्रह्म जन्मे नहीं मोर आश। वो उद्देश्य संपूर्ण शुद्ध है। तो ज्यादातर जो भक्ति में आते हैं तो प्रथम अवस्था में तो शुद्ध भक्ति के लिए नहीं आते। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृति अर्जुन अर्थो जिज्ञास और अर्थार्थी ज्ञानी छा भरत हर्षम। तो लोग जो अर्थ है अर्थात इस भौतिक संसार में दुखी है और दुख से बचाने के लिए भगवान के पास आते, तो ऐसे बहुत भक्त है। तो ऐसे भक्तों को आश्वासन देने के लिए श्रीमद् भागवत में भी बहुत श्लोक है जिसमें प्रमाण है कि जो भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं वे इस भव संसार से मुक्त हो जाते हैं। विपदं परं परं भदं 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 यद् विपदं न तेषां। वो श्लोक का शुरू क्या है, समाश्रित ये पद पल्लव प्लवं महत्पदं पुण्य यशो मरारे। भवं वदेवत्स पदं परं परं भदं 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 यद् विपदं न तेषां। तो वो श्लोक है, ऐसे बहुत श्लोक है भगवान में कि जो भगवान कृष्ण के आश्रय में आते हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होते। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सुअर्जुन। तो हम मुक्त होने चाहते हैं अर्थात हम भव संसार में रहना नहीं चाहते, हम भौतिक चेतना से मुक्त होने चाहते। प्रकृति के तीन गुण का प्रभाव से हम कृष्ण को भूलते, इसलिए हम वो प्रभाव से मुक्त होने चाहते। तो उस प्रकार जैसे अन्य संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय में मुक्ति प्रार्थना वो अपराध नहीं है, दोष नहीं है, क्योंकि जीव का स्वभाव है मुक्त। हम अभी बद्ध अवस्था में है लेकिन जीव तो मुक्त होने चाहिए, परंतु उससे मुक्त होने की इच्छा से और बहुत ही उत्कृष्ट उद्देश्य है संपूर्ण अहैतु की भक्ति। तो वो चैतन्य महाप्रभु का प्रचार है, मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति अहैतु की त्वयि। और चैतन्य महाप्रभु के भक्तों से सुनने से लोग जो अर्थ है, जो दुखी है इस भव संसार में, जो भगवान के पास आते हैं दुख निवारण के लिए, तो गौड़िया भक्तों की संगति से वे भी इस धारणा पकड़ेंगे कि मुक्ति परम उद्देश्य नहीं है. मुक्त वास्तव में कृष्ण सेवा करना चाहिए, और मुक्ति के लिए प्रार्थना करना वो श्रेष्ठ प्रार्थना नहीं है. श्रेष्ठ प्रार्थना है मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिरहितु कीत्वा, अर्थात यदि मैं बार बार जन्म लूंगा तो ठीक है, परंतु हर एक जन्म में कृष्ण जगदीश की सेवा करना चाहता हूँ. तो एक परिप्रेक्ष्य से उत्तर दिया था इस बार, और दूसरा परिप्रेक्ष्य से हम मुक्ति वंचा को गाली दे सकते हैं. तो जैसे तैसे लोग भक्ति में आते हैं, उनका कल्याण होते हैं. तो ऐसे भक्तों को सूचित करना चाहिए कि भक्ति भक्तिमयी मुक्ति से ऊपर अहैतु की अवस्था है, अहैतु की भक्ति. भक्तों जो मुक्ति निर्विशेष ब्रह्म में लीन हो जाते हैं और इसलिए भक्ति करते हैं, तो ऐसे लोग ज्ञान मिश्र भक्त बोल सकते हैं. यदि वो भक्ति भावना मजबूत है और यदि मुक्ति की इच्छा मजबूत है, तो ऐसे लोग मायावादी बोलते हैं. भेद तो सूक्ष्म है. तो मायावाद क्या है, और जिससे हमारी भक्ति में मायावाद का कुछ भी गंध नहीं है, इसलिए बहुत चर्चा करना चाहिए, क्योंकि विशेषकर जो भक्त जो हिंदू बैकग्राउंड से आते हैं, उनकी संस्कृति में, आधुनिक हिंदू संस्कृति में वो मायावाद प्रभाव बहुत है. तो यदि हम मायावाद के बारे में प्रचार बहुत तो नहीं करेंगे, तो वो अंतर है शुद्ध भक्ति और मायावाद में, तो लोग तो पहचान नहीं करेंगे. और भक्ति का नाम में वे मायावाद इच्छाओं का पोषण करेंगे, और इस प्रकार उनकी भक्ति तो शुद्ध नहीं होगी. बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन तबुता ना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन. तो बहुत जन्मों में भी हम श्रवण कीर्तन कर सकते हैं, और उसका वास्तव फल कृष्ण प्रेम प्राप्ति हम नहीं मिलेंगे यदि हमारा श्रवण कीर्तन में अपराध होते. और मुक्ति वंचा वो सबसे बड़ा अपराध है. थार मध्य मुक्ति वंचा खैतव प्रधान, जहाँ होते कृष्ण भक्ति हो अंधरधान. चैतन्य चरितामृत का प्रारंभ में कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्रीमद् भागवत का खैतव धर्म शब्द का विचार करते हैं. खैतव धर्म क्या है? तो कविराज गोस्वामी बोलते हैं कि खैतव धर्म है चतुर्वर्ग, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, जिनमें मुक्ति वंश सबसे बड़ा कैथव अर्थात धोखा देन. तार मध्य मोक्ष वंश कैथव प्रधान, जहा होते जिससे कृष्ण भक्ति हो अंतर्धन, मतलब नष्ट हो जाते।
हरे कृष्ण गुरु महाराज साधक प्रणाम। मेरे दीक्षा एक साल पहले हुई है, तब से मैंने टीवी पर जीवन देखना भी बंद कर दिया है, परंतु मेरी पत्नी टीवी को त्यागने को तैयार नहीं है। वो कहती है कि मैं उसमें महाभारत और
टीवी उठा के उसका सिर पर ठोड़ दूं। क्या करे, सबके घर में गुरु होना चाहिए। और लेकिन आजकल सबके घर में शैतान है। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनम आत्मनः। वो तीन द्वार क्या है नरक जाने के लिए? कामस क्रोधस तथा लोभस, तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत्। काम क्रोध और लोभ नरक के तीन द्वार है, गीता में श्री कृष्ण कहते हैं। इसलिए ये तीनों को छोड़ना चाहिए। लेकिन टीवी से हम क्या मिलते हैं? काम क्रोध और लोभ। काम का मतलब सुंदरी नारी का नाच देखना, और प्रेम पिया, कृष्ण प्रेम नहीं है, राधा और कृष्ण प्रेम वो प्यार नहीं है, और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड उस प्रकार प्रेम दिखाना है। काम क्रोध तो ऐसे हिंसा प्रतिहिंसा लड़ाई करना, वो ये दोनों मुख्य है टीवी में। और लोभ, कौन बनेगा करोड़पति? और ऐसे एडवर्टिजमेंट होता है, ये चीज खरीद लो, दूसरा चीज खरीद लो, और इस प्रकार भौतिक कामनाओं की वृद्धि होती है, तो उससे चरित्र नाश होते। लेकिन जैसे लोग तो स्मोकिंग करते हैं और उससे अडिक्टेड हो जाते हैं, तो इस प्रकार लोग टीवी से अडिक्ट होते। तो क्या करना है? वो भक्ति का नाशक है। पूरा प्रश्न तो पूर्ण नहीं है।
मेरी पत्नी टीवी को त्यागने को तैयार नहीं। वो कहती है कि मैं उसमें महाभारत और कुछ आध्यात्मिक कार्यक्रम देख रही हूँ, परंतु ऐसे कार्यक्रम कितने प्रामाणिक होते हैं? कृपया इस पर थोड़ा अपना राय व्यक्त करें। आगे पत्नी के साथ बच्चे भी टीवी देखने लगते हैं, जो कुछ भौतिक कार्यक्रम देखते हैं जो उनके आध्यात्मिक प्रगति के लिए अच्छा नहीं है।
टीवी महाभारत कितने प्रामाणिक है? टीवी महाभारत देखने से अच्छा है कि आप सब परिवार के कुटुम्ब सब एक साथ बैठ के शील प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ेंगे, कृष्ण बुक पढ़ेंगे? और अच्छा है कि वो सब भक्त मंडली में, सब जगह में आप कृष्ण कॉन्शियस ड्रामा करेंगे, और इससे बच्चे भी वो महाभारत में वो सब कहानी जो है सीख सकते हैं। वो कितने साल के पहले, 25 साल के पहले रामायण टीवी में आया था, और वो नायिका जो सीता देवी का रोल ली, वो जहाँ जहाँ जाती थी लोग तो सीता जी की पूजा करने चाहते थे, लेकिन वो तो टी शर्ट जीन्स पहनने वाले थे और अच्छा नहीं लगते, वो बॉलीवुड नायिका। सो श्रील प्रभुपाद इसके बारे में चैतन्य चरितामृत का व्याख्या में उन्होंने कहा कि वो भक्ति से श्रील प्रभुपाद वाले कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वाले कि जात्र दौले नारद उस प्रकार का नारद हम नहीं चाहते, हम वास्तव नारद चाहते। यात्रा दल क्या बोलते हैं हिंदी में, यात्रा का मतलब वृंदावन में भी ऐसा होते कि यात्रा का मतलब गांव गांव में ड्रामा ट्रूप जाते हैं और श्रीनगर स्ट्रीट ड्रामा जो उद्देश्य खराब नहीं है, लेकिन काल का प्रभाव से वो सब उसका मुख्य उद्देश्य हो गया है पैसा कमाना। तो श्रील प्रभुपाद नाटक के बारे में बोले कि वो सब जो रोल लेते हैं तो सब शुद्ध भक्त होने चाहिए, मतलब माला जापने वाले जो पैसा के लिए नहीं करते भक्ति के लिए ही करते। बहुत कठिन है कृष्ण भक्ति प्रचार, क्योंकि काली का प्रभाव बहुत बहुत ही है, माया का प्रभाव से मुक्त होना बहुत कठिन है। यदि हम थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो यदि हम बोलते हैं जो ठीक है थोड़ा सा महाभारत देखेंगे तो बाद में हम देखेंगे कि चौबीसों घंटे में ही टीवी देखते रहते हैं। सो मेरा विचार है खराक होना चाहिए, लेकिन कैसे या जस करना परिवार में आपको निर्णय करना पड़ेगा। ऐसे ही बहुत परिवार में कि पति तो शुद्ध कृष्ण भक्ति करने चाहते हैं, पत्नी तो नहीं चाहते हैं, पत्नी करने चाहते हैं लेकिन पति की इच्छा नहीं है। तो कैसे एडजस्ट करना बहुत कठिन है। इसलिए हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम खलो नास्तैव 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 गतिरन्यथा। कलि युग में सभी अवस्था कठिन है, इसलिए इस कलि युग में ज्यादा तपस्या करने का जरूरत नहीं है, बड़ा पंडित होने का जरूरत नहीं है, तो हरि नाम ही करना है। हरि नाम करने में बहुत कुछ सहना पड़ेगा और बहुत संघर्ष भी होते हैं, है ऐसा चैनल
दिशा
चैनल पर
इसमें
भी कार्यक्रम देख सकते हैं। क्या नाम है
टीवी दिशा।
अच्छा वो जिसके बारे में वो हम चर्चा की दिशा नहीं देखा था, इससे इसके बारे में नहीं बोल सकता। एक बात है कि खाली चूंकि इस्कॉन नाम लगाना है उसका अर्थ है नहीं है कि सब कुछ जो इस्कॉन का नाम में आते है सब कुछ शुद्ध भक्ति है। तो इस्कॉन एक बड़ा संस्थ है और उसमें सब लोग तो अच्छी तरह शुद्ध भक्ति चैतन्य महाप्रभु और श्रील प्रभुपाद के मार्गदर्शन के अनुसार सब कुछ नहीं करते हैं। तो सावधानी से देखो, मुझे मालूम नहीं क्या है वो दिशा चल में हुआ है, पहली बार सुन रहा हूँ कि ऐसा छानो है, लेकिन टीवी देखने से और अच्छा है शिल प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ना। शिल प्रभुपाद तो इस उपदेश हमको बार बार देते, टीवी देखने से बुद्धि कम जाती है, साइंटिफिक रिसर्च से ये पता चलता है कि टीवी देखने से लोग की बुद्धि कम जाती है। तो अच्छा हो श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ना, भक्तों के साथ नाटक बनाना, यदि भगवान को बुलाना है आपका घर में, इनकी एकदम बढ़िया सेवा होनी चाहिए। नहीं है कि हम गेस्ट को बुलाते हैं फिर हम बोलते हैं तो ठीक है बैठो मैं बाहर जाता हूँ और तुमको खिलाना संभव नहीं होगा क्योंकि मैं बाहर रहूँगा, समय नहीं है, तो बैठो बस अकेला। तो अगर भगवान को बुलाना है तो इनको राजा के राजा की सेवा से उनकी से उससे बढ़िया उनकी सेवा होनी चाहिए। तो घर घर में ठाकुर जी की सेवा होनी चाहिए, लेकिन सेवा होनी चाहिए। सेवा का मतलब ओ 24 घंटे में कुछ ना कुछ होनी चाहिए उनकी सेवा में, मंगल आरती करना, भोग चढ़ाना, शयन देना, कीर्तन करना, ये सब करना है। और वो ये विचार भी करना चाहिए कि यदि परिवार में खाली 3-4 व्यक्ति है और अगर 1-2 बीमार होते तो सेवा अच्छी तरह नहीं चलेगी, तो ये विचार करना चाहिए सेवा करने के पहले। पूर्व काल में परिवार का मतलब था कम से कम 20-30 सदस्य, आजकल हम दो हमारे दो चलते और हम दो और हम दोनों ऑफिस जाते हैं और बच्चे भी दिन भर पढ़ाई करते हैं, तो इसी अवस्था में कैसे भगवान की सेवा हो सके, वो ठाकुर जी की सेवा। आप सेवा कर सकते हैं हरि नाम से, समझाना समझाना तो आधुनिक साइंस के द्वारा समझाना समझना और समझाना संभव नहीं है। ये धाम अप्राकृत भूमि है, भौतिक भूमि रापो नलो वायो खंग मनो बुद्धि रे भाई, वो सब भौतिक वस्तुओं से घटित नहीं है, ये भगवान का धाम है। तो कैसे समझना है, ऐसे श्रद्धा होनी चाहिए कि ये धाम साधारण वस्तु नहीं है, ये भगवान का धाम है। मैं साइंस के द्वारा प्रमाण नहीं दे सकता, ये सब बात वो अप्राकृत चिन्मय धाम के बारे में वो सब बात जो है उसका साइंटिफिक उसके बारे में साइंटिफिक प्रमाण देना संभव नहीं है। तो साइंस तो खाली इस भौतिक प्रकृति के बारे में है, और हमारा साइंस है भगवत तत्व विज्ञान, जो श्रद्धायुक्त होने से ग्रहण करना चाहिए। कैसे संभव है? तो है सब सब कुछ, दोनों प्रकृति, अंतरंग शक्ति, बाह्यरंग शक्ति, सब भगवान के अधीन है। भगवान सब कुछ कर सकते हैं। हमारा दोष है कि हम सब कुछ तथाकथित साइंस के द्वारा समझना चाहते हैं, लेकिन भगवान और भगवान की अंतरंग शक्ति वो सब भौतिक बुद्धि के अतीत है। इसलिए वो भौतिक साइंटिस्ट भगवान को विश्वास नहीं करते। भौतिक साइंस का विचार में वो किसी चीज जो हम नहीं देखते, जिसका माप हम नहीं कर सकते, तो उसका अस्तित्व नहीं हो सकते। तो भक्ति में प्रवेश करना का पहला शर्त है वो सब जो आधुनिक भौतिकतावादी साइंटिस्ट बोलते हैं वो सब अविश्वास कर, वो सब जो वे बोलते हैं वो हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय है वो ज्ञान जो हम सनातन शास्त्र से मिलते हैं। शास्त्र में वो ज्ञान जो है वो सनातन है, और आज साइंस जो है जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, तो एक पीढ़ी के बाद बच्चे तो दूसरा तथा कथित ज्ञान साइंस का नाम ही पढ़ेंगे, क्योंकि इस खेते हुए साइंस हमेशा बदलते जाते हैं। लेकिन जो सच है उसका बदलना नहीं है। जो हम श्रील प्रभुपाद से सुने वो सृष्टि के पहले ब्रह्मा जी भगवान से सुन लिया है। जो ब्रह्मा जी नारद को बोले, जो नारद व्यास को बोले, जो व्यास माधव को बोले, और इस प्रकार वो ज्ञान जो परंपरा में से आता है उसका बदलना नहीं है, क्योंकि ये साची है। और शास्त्र में ऐसे कहना है कि इस वृंदावन धाम अप्राकृत है, और प्रलय का समय वृंदावन धाम रहते हैं, तो हमें विश्वास करना चाहिए बस। कोई साइंटिफिक प्रमाण नहीं है, नहीं है, नहीं होगा। साइंटिफिक प्रमाण है वो आध्यात्मिक साइंस, भगवत तत्व विज्ञान। प्रमाण है शास्त्र, वो ही प्रमाण। लेकिन टेस्ट ट्यूब लेके, बंसन बर्नर लेके, मैथमेटिकल फॉर्मूला करने से वो वृंदावन को समझना संभव नहीं है।
क्या माता जी अपनी जगह पर रहकर कीर्तन में नृत्य कर सकती
है?
क्या माता जी अपनी जगह पर रहकर कीर्तन में नृत्य कर सकती है?
क्यों नहीं, महिला सत्संग होना चाहिए। पुरुष अगर उपस्थित हो, वो संस्कृति है कि पुरुषों गाते हैं, और यदि महिलाएं अकेले हैं, मतलब कोई पुरुष व्यक्ति नहीं है, तो ऐसा आप सब कुछ करो महिला सत्संग में।
उसके अंतर्गत कौन सी सेवाएं आती हैं?
वैष्णव सेवा। तो वैष्णवों की सेवा करना कठिन है क्योंकि वैष्णवों की कोई इच्छा नहीं है, उनकी इच्छा है कृष्ण भक्ति करना। तो वैष्णव सेवा है कृष्ण कथा सुनाना, उनके साथ कीर्तन करना। और जब तक हम इस भौतिक संसार में है तब तक कुछ भौतिक आवश्यकताओं भी है। तो वैष्णव सेवा में प्रसाद देना, और यदि दूर से आते हैं उनके श्रीचरण प्रक्षालन करना, और उनके लिए वैष्णवों के लिए रहना का बंदोबस्त करना, ये सब वैष्णव सेवा है। भक्तों की बहुत याचना नहीं, प्रयोजन नहीं है, लेकिन जिससे वे कुशलता से श्री कृष्ण की सेवा कर सकेंगे, इसलिए हम ऐसे कुछ खिला सकते हैं, ठहराने की व्यवस्था कर सकते हैं इत्यादि। मुख्य सेवा है श्रील प्रभुपाद की सेवा है, कृष्ण भक्ति प्रचार, पुस्तक वितरण, यही सब वैष्णव सेवा है, प्रभुपाद की सेवा। बैलेंस, क्या बैलेंस है भक्ति और सांसारिक जीवन में? श्री कृष्ण क्या बोले, सर्वधमान परित्यजा मामेकं शरणं व्रज। तो वो ही बैलेंस है। तो कैसे अर्जुन एकांत शरण लिए श्री कृष्ण के चरण में, उनके उपदेश पालन करने से, और श्री कृष्ण का उपदेश था युद्ध करना। अर्जुन का विचार था कि इस युद्ध करना मायक है और आध्यात्मिक है युद्ध छोड़ना। श्री कृष्ण अर्जुन को बोले मामेकं शरणं व्रज, एकांत आश्रय करो मेरे चरणों में। तो कैसे एकांत आश्रय लेना श्री कृष्ण के चरणों में? इनका आदेश पालन करने से। तो जब तक हम संसार में है तो तब तक कुछ ना कुछ करना है, तो वो सब जो करना है तो श्री कृष्ण के उपदेश के अनुसार करना चाहिए। और बैलेंस क्या है? सततम कीर्तयन्तो माम यथंतश्च दृढ़व्रताः। हमारे जीवन में तो ज्यादा समय साक्षात कृष्ण सेवा करना चाहिए, श्रवण कीर्तन। यदि हम 14 घंटे दिन में काम करते हैं तो श्रवण कीर्तन के लिए समय कम होगा। तो इसलिए वो काम जो करना है संसार चलाने के लिए, तो उसको यथा प्रयोजन होना चाहिए। ज़्यादा काम करना तो जरूरत नहीं है, और जितने भी जरूरत है जिससे हम संसार चला सकते हैं उस इतना सा करना है, और बाकी समय श्रवण कीर्तन के लिए होना चाहिए। तो आधुनिक समाज में ऐसे बैलेंस रखना कठिन है, क्योंकि श्रील प्रभुपाद इस मंतव्य किए है कि मॉडर्न सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन कॉन्स्टेंट हार्ड वर्क। आधुनिक सभ्यता का आधार है सदैव मेहनत करना। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद बहुत चाहते थे वर्णाश्रम पुनः संस्थापन करना, जिससे भक्तों शांति में ये सब आसुरिक भाव प्रवृत्त शहरों से दूर रहना और शांति में भक्त संग में कृष्ण भक्ति करना, इसके बारे में आज वो वानाश्रम प्रदर्शन होगा। नहीं
नए भक्तों को दृढ़ता बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? नए भक्तों को दृढ़ता बनाए रखने के लिए
नया भक्तों के लिए दृढ़ता रखना और प्रवीण भक्तों के लिए भी दृढ़ता रखना। दृढ़ता होना चाहिए। दृढ़ता होते हैं कैसे? यदि हमारा पूरा विश्वास है कि मैं कृष्ण का दास हूं, तो हमारी भक्ति में दृढ़ता होगी। तो यदि पूरा विश्वास नहीं है या यदि विषय इंद्रिय सुख के लिए आशा है, तो हमारी भक्ति दृढ़ नहीं होगी। यदि हम भक्ति करते हैं परंतु साथ साथ हम सोचते हैं कि इस संसार दुखमय है, लेकिन इतना दुखमय नहीं है, बहुत कुछ भी अच्छा है, तो भक्ति में ही दृढ़ता नहीं होगी। तो इसलिए ये ऐसे बहुत प्रश्न है, कैसे भक्ति में दृढ़ता, कैसे भक्ति में निष्ठा, कैसे भक्ति में नम्रता। तो ये सभी प्रश्नों का एक उत्तर है। तो जिन उस प्रकार के भक्त जिनमें उस गुण है जो आप उन्नयन करना चाहते हैं, तो ऐसे भक्त के साथ संग करना चाहिए। संगात संजायते कामः, संग के अनुसार हमारी कामना की पुष्टि होती है। तो यदि हम भक्ति दृढ़ता चाहते हैं तो दृढ़ भक्तों की संगति करना चाहिए। यदि हम नम्रता गुण लाना चाहते हैं तो नम्र भक्तों के साथ संगति करना चाहिए। और नया भक्तों के लिए दृढ़ता और प्रवीण भक्तों के लिए भी दृढ़ता होने चाहिए। कभी कभी हम देखते हैं कि भक्त जो नया है तो बहुत उत्साही है और कुछ दिन के बाद थोड़ा ठंडा हो जाते हैं। अभी मैं प्रवीण हो गया हूँ, सब भक्त मुझको काफी सम्मान देते ही वो अच्छे थे, ठीक है, तो मेरा काम है खाली दूसरों को आशीर्वाद देना। मैं यहाँ शयन करके सबको भगवान जैसे शयन करके आशीर्वाद देता हूँ। तो नवीन भक्तों, प्रवीण भक्तों, सभी भक्तों के लिए दृढ़ता होनी चाहिए भक्ति में।
प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रहते हैं, क्या परमात्मा
है सबके हृदय?
सबके सबके हृदय में परमात्मा रहते हैं, क्या परमात्मा के साथ ब्रह्मा और शिव भी रहते हैं या हमें भक्त के द्वारा प्रवचन मिलता है?
ब्रह्मा के हृदय में है।
क्या परमात्मा के साथ?
परमात्मा के साथ
ब्रह्मा शिव
ब्रह्मा शिव और बहुत देवता है। वो जैसे शास्त्र में वो श्रीमद् भागवत में वो श्लोक है कि कर्मणा दैव नेत्रेण जन्तुर्देहोपपत्तेय। तो एक जीव जो एक शरीर का त्याग करते तो दूसरे शरीर में प्रवेश करते, तो ये सब संचालन कैसे होते? देव संचालन, देव का मतलब भगवान और उनके सब सहचारी देवताओं और अजामिल प्रख्यान में वो प्रमाण है कि भगवान विष्णु सभी जीवों का हर एक कार्य कलाप देखते रहते। तो भगवान परमात्मा विष्णु देखते, ब्रह्मा भी देखते, शिव भी देखते, अग्नि भी देखते, चंद्र भी देखते, इंद्र भी देखते, याम भी देखते हैं, सूर्य भी देखते हैं। तो सब कुछ जो हम करते हैं वो सब देवताओं देखते हैं। तो श्री कृष्ण अकेले नहीं है इस भौतिक संसार में, वे उनके सब सहचारी प्रतिनिधि देवताओं के साथ इस संसार का संचालन करते हैं। तो परमात्मा के साथ वो सभी देवताओं हैं, उनकी पूजा सेवा करते हैं। अचिंत्य सबके परमात्मा के साथ है और सब देवता भी, ओ गौ माता के शरीर में भी है। तो ऐसा है ये सब देवताओं तो इस भौतिक संसार में सर्वव्यापी है और कस उनकी स्थिति है गौ माता में। जी वो ही संस्कृति है। वो प्राचीन संस्कृति है, आधुनिक संस्कृति में तो नहीं है, लेकिन ऐसे होने चाहिए जिससे कुमारी अवस्था से वो छोटी मतलब जो अभी लड़की है तो बाद में तो महिला होगी, तो वो मातृ भाव लाने के लिए तो शुरुआत से लड़कियों को ऐसे कहना माता अम्मा।
एक माता भी अपनी पुत्री को माता भी कहेंगे?
पुत्री हाँ ऐसे जो वो पुत्री की माता है तो मतलब औपचारिक रूप में ऐसे बोल सकते, स्त्रियों का नाम नहीं कहना वैदिक संस्कृति में। मैं बासु घोष प्रभु उनकी लड़की है, मैं देखा था कि वो उसका बचपन में भी उसको माता बोला ऐसे। आप शास्त्र में रिसर्च करो, अलग अलग धर्म शास्त्र है लेकिन वो साधारण विधि है नहीं, मातृवत फलदारेषु और वैदिक संस्कृति में वो बचपन में भी विवाह होते हैं।
हरे कृष्ण महाराज दादा प्रणाम। कई बार मैं ऐसे परिस्थितियों से गुजरता हूँ कि उसमें डिवोटीज का वर्तन आचार बहुत विचित्र लगता है, उस वक्त तो मैं चुप रहना उचित।
विचित्र ही है भक्तों जो करते विचित्र ही है, सुबह सुबह उठना ठंडे के मौसम में भी और विचित्र पोशाक पहनते हैं, और विचित्र अलंकार लगाते हैं, सब कुछ विचित्र है। विचित्र होना अच्छा, साधारण सामान्य होना ठीक नहीं है, विचित्र होना अच्छा है लेकिन अति विचित्र नहीं। लेकिन क्या है ये वो कि वो नॉर्मल जीवन जो है उससे हम कृष्ण वो उसको चढ़ के ही हम कृष्ण भक्ति करने का प्रयास करते हैं, और उस प्रयास में हमेशा सबके मन में वो संघर्ष होते हैं। एक तरफ से हम श्री कृष्ण का गीता उपदेश सुनते हैं, और दूसरी तरफ से माया हमको बुलाते हैं। तो इस प्रकार भक्तों कभी कभी थोड़ा विमोहित हो जाते हैं, और इस प्रकार उनका आचरण विचित्र होते हैं। तो जो प्रयास करते हैं भक्ति में वो साधु है, तो अति दुराचारी होते हुए भी तो साधु है। यदि अनन्य भक्ति है,
लेकिन उसके बाद मेरे माइंड और इंटेलिजेंस के बीच में आर्गुमेंट चलता है उस ड्यूटी के बारे में।
तो आप श्लोक इस श्लोक का विचार करो, अपि चेत् सुदराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य। जो पूरा प्रयास करते भक्ति में लेकिन अभी पूर्ण सिद्ध नहीं होने का कारण से कुछ करते हैं जो नहीं करना चाहिए, तो फिर भी कि वो साधु है उसका विचार करना चाहिए। और यदि आपका वो आचरण देखने से आपका मन तो बहुत विचलित हो जाते हैं, तो आप वो ही भक्त को प्रणाम कीजिए दूर से, और इनके साथ संग मत कीजिए, घनिष्ठ संग मत कीजिए। दैट्स इट, टाइम हो गया, अभी आरती का समय है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।